हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब पार करने के लिए बस सातवां और अंतिम पड़ाव बचा था, जिसके लिए युग कृषा के साथ एक क्रूज पर पहुंचा। क्रूज में ही सातवां पड़ाव बनाया गया था। युग कृषा के साथ क्रूज के एक रूम में पहुंचा। वहां एक पुरानी टाइप की एंटीक अलमारी रखी हुई थी। युग ने उसका ताला खोलकर उसे खिसकाया तो पीछे एक दरवाजा था। दरवाजे के अंदर से युग और कृषा एक कमरे में पहुंचे। वो कमरा क्रूज का हिस्सा हो सकता था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। कमरे में आगे चलने के बाद उन्हें कुछ सीढ़ियां दिखाई दीं। सीढ़ियां उतरने के बाद युग और कृषा अंडर वाटर एरिया में पहुंच चुके थे। वो एक कांच का अक्वेरियम जैसा कमरा था, जिसके इर्द गिर्द पानी साफ दिखाई दे रहा था। उस कमरे में आते ही कृषा ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये तो किसी फेरी टेल की तरह लग रहा है, देखो ना युग कितना खूबसूरत है। कृषा वहां आकर बहुत एक्साइटेड हो रही थी, जबकि युग चारों तरफ कुछ और ही देख रहा था। उसकी नजरें वहां मौजूद एक सेफ पर टिकी हुई थीं, जो कि कांच से ही बनाई हुई थी। उसके अंदर कुछ पेपर्स रखे हुए थे। युग ने कृषा का हाथ पकड़ा और उसे उस सेफ के पास लेकर गया। सेफ में रखे पेपर की तरफ देखकर कृषा ने मुंह बनाकर कहा, एक बार फिर किसी तरह के पेपर्स, इतनी खूबसूरत जगह पर इन कागज के टुकड़ों को छुपाकर रखने की क्या जरूरत थी? कितनी ज्यादा अच्छी जगह है, मैं आज तक ऐसी जगह पर कभी नहीं गई हूं। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुम इस जगह पर पहले भी आ चुकी हो। मैं कृतिका सिंघानिया और शांतनु सिंघानिया की अकल की दाद देता हूँ। इन सातों पड़ावों की सिक्योरिटी को उन्होंने काफी अच्छे से डिजाइन किया है, युग ने अप्रिसिएशन में सिर हिलाकर कहा। फिर उसने कृषा का हाथ पकड़ा और सेफ पर लगाते हुए कहा, चलो अपने फिंगरप्रिंट से इसे अनलॉक करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे मॉम डैड को तुम नाम से क्यों बुलाते हो? वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? रिश्ते में तुम्हारे सास ससुर लगते हैं, कुछ तो इज्जत करो उनकी। कृषा ने युग को तिरछी निगाहों से घूरते हुए कहा और फिर सेफ को अनलॉक करने लगी। सेफ अनलॉक होने के बाद उसमें से कुछ पेपर्स निकले, जिसे युग पढ़ रहा था। उन्हें पढ़ते हुए उसके फेस पर ईविल स्माइल थी, जबकि कृषा हर बार की तरह हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो जानती थी युग को कुछ पूछने का फायदा नहीं है, जब उसकी मर्जी होगी तभी वो कृषा को कुछ बताएगा। पेपर्स पढ़ने के बाद युग ने कृषा को दिखाते हुए कहा, इन डॉक्यूमेंट के हिसाब से माफिया प्रिंसेस और सातों पड़ावों की मालकिन तुम हो। मैंने इसे पार किया है तो ऑटोमेटिकली ये मेरे नाम हो जाते हैं, पर मैं तुम्हें इसमें अपने साथ बराबर का हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। किंग कभी अकेले राज नहीं कर सकता, उसे अपने साथ क्वीन की जरूरत पड़ती है, और यू आर माई क्वीन। युग की बात सुनकर कृषा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। युग ने अपने पॉकेट से एक पेन निकाला और उस पर अपने सिग्नेचर करने के बाद साथ में कृषा से साइन करवाया। उन पेपर्स के साथ में एक लेटर भी था। वो लेटर शांतनु और कृतिका मलिक ने मिलकर लिखा था। युग ने उसे उठाया और कृषा को देते हुए कहा, ये तुम्हारे मॉम डैड ने लिखा है, शायद तुम्हारे लिए हो। उस लेटर को देखते हुए कृषा इमोशनल होने लगी, उसकी आंखें नम हो रही थीं। उसने लेटर खोलना चाहा, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था, सातवें पड़ाव को पार करने वाले के नाम। कृषा ने उस लेटर को वापस युग को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि तुमने इसे पार किया है। तुम चाहो तो अपने मन में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इसे जोर से पढ़कर मुझे भी सुनाओ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर मॉम डैड क्या चाहते थे। युग ने कृषा की बात पर हामी भरी और वो लेटर खोला। युग उसे पढ़ते हुए बोला, ये तुम हो युग राणा, सिर्फ तुम ही इसे पूरा कर सकते थे, या यूं कहें हम चाहते थे कि इसे तुम ही पूरा करो। तभी कुछ पासवर्ड्स तुम्हारे हिसाब से सेट हुए थे। लेटर की लिखी कुछ लाइंस को पढ़ने के बाद युग और कृषा दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें तुम पर यकीन था, कृषा ने युग की तरफ देखकर नम आंखों से कहा। कृषा को शांत करने के लिए युग ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने कृषा के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, इसे पढ़ने के बाद तो यही लग रहा है कि उन्हें यकीन था कि ये मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि हम दोनों साथ आएं, साथ रहें। युग ने कृषा को शांत कराया और फिर लेटर को आगे बढ़ने लगा। तुम दोनों यहाँ एक साथ आए हो, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। अब हम नहीं जानते कि वो रिश्ता प्यार का है या नफरत का, क्योंकि हमारे पास्ट इतने अच्छे नहीं रहे हैं। जब सब ठीक करने की कोशिश की तो फिर से सब बिगड़ गया। मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूँ युग, कि तुम दोनों के बीच चाहे रिश्ता जो भी रहा हो, लेकिन मेरी बेटी का ध्यान रखना। तुम ही माफिया किंग बनोगे, ये तुम्हें एक नज़र देखते ही मैंने महसूस कर लिया था कि एक ना एक दिन तुम यहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे। हम बस तुमसे यही चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी कृषा का ध्यान रखना, वो बहुत इनोसेंट है। हम जानते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद हम शायद ही बच पाएं, वो लोग हमें ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहने देंगे। आखिर में बस यही कहूंगा कि अगर ये जिम्मेदारी मिली है तो इसे अच्छे से निभाना। माफिया किंग के दोस्त से ज्यादा दुश्मन होते हैं। मैंने ये पोजीशन थोड़े टाइम के लिए संभाली थी, लेकिन मैं अब और नहीं संभाल सकता। मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरी कमजोरी कृतिका और कृषा को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस इसी के लिए मैं ये सब यहीं पर खत्म करके कृषा के नाम करना चाहता हूँ। तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहना, और अब से तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। लोग तुम्हारे ऊपर वार करने के बजाय तुम्हारी कमजोरी को टारगेट करेंगे। शांतनु सिंघानिया ने उस लेटर में युग को काफी कुछ समझाया था जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में खुद के साथ होता हुआ महसूस किया था। लेटर वहीं पर खत्म हो चुका था। उसे पढ़ने के बाद युग ने उसे फोल्ड करके कृषा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, इसे हमेशा अपने साथ में रखना। ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हारे मॉम डैड भी चाहते थे कि हम दोनों साथ आएं। और देखो, किस्मत को यही मंजूर था। मैंने तुम्हें गलत तरीके से भले ही पाया हो, लेकिन तुम पर हमेशा से मेरा ही हक था क्रिश। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी। जल्द ही दोनों इमोशंस के उस दौर से बाहर निकल चुके थे। कृषा ने युग से पूछा, अब आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तुम तो माफिया किंग बन चुके हो, ये लोगों को कब बताओगे? ठीक उसी वक्त जब सब मुझे मरा हुआ मानकर खुशी से पार्टी कर रहे होंगे, युग ने ईविल स्माइल करते हुए कहा। कृषा हैरानी से युग की तरफ देख रही थी। युग ने उसे जवाब देते हुए कहा, माफिया में एक तरह की रिचुअल होती है कि जब भी कोई माफिया मरता है तो उसकी न्यूज ऑफिशियल तौर पर उनके घर वाले सबके सामने जाहिर करते हैं। फिर एक फीस्ट होता है, कोई उसे गम के तौर पर लेता है तो कोई खुशी के तौर पर। कल शाम इसी तरह की किसी मीटिंग में बुआ और मेरी फैमिली मेरी और तुम्हारी मौत का अनाउंसमेंट करने जा रही है। तो क्या हम वहीं पर जाने वाले हैं? कृषा ने सब समझते हुए आंखें बड़ी करके पूछा, जिस पर युग ने तिरछा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कृषा आगे कुछ पूछती उससे पहले युग खुद ही बोल पड़ा, हमें कल शाम तक के लिए छुप कर रहना है, तो इस क्रूज से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। चलो रूम में चलते हैं और उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि कैसे कल के अनाउंसमेंट को और एक्साइटेड बनाया जा सकता है। युग के तेवर देखकर साफ था कि उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा है और वो कल एक बड़ा धमाका करने वाला है।